ओम शांति। विश्व कल्याण के लिए संसाधनों का उपयोग, बाबा ने कहा है कि अब समय केवल अपने स्व कल्याण का नहीं है, बस जो भी मिले बाबा से वो बांटते जाओ, विश्व कल्याण करते जाओ, इसमें अपना स्व कल्याण भी समाया हुआ है, वो निहित है। लेकिन दूसरी तरफ साथ में बाबा ने ये भी कहा है कि जब अपना स्टॉक भरपूर होगा तब हम दूसरों को दे सकेंगे। अगर अपना स्टॉक ही खाली होगा, भरपूर नहीं होगा, तो दूसरों को कैसे दे सकेंगे। इसीलिए अपने स्टॉक पर भी ध्यान देते जाओ। मुझे याद आता है कि बाबा की 1990 के दशक में एक मुरली चली थी, और जब विंग्स की सेवाएं काफी तेजी से चल रही थी, तब बाबा ने कहा था कि वैसे तो बाबा सभी विंग्स को सकाश देता है, शक्ति देता है, लेकिन उनमें भी तीन मुख्य विंग का बाबा ने खास नाम लिया था कि समय प्रमाण अभी इन विंग्स को बाबा विशेष सकाश देता है। इनकी वर्तमान समय जो आवश्यकता है, और वो आवश्यकता भी बाबा ने खास बताई थी। एक बताई थी बाबा ने कि बच्चों के बहुत जन्मों के हिसाब किताब हैं, कर्मों के हिसाब, और वो इस अंतिम शरीर के द्वारा ही चुकतू करने हैं। इसलिए बाबा एक तो डॉक्टरों को और मेडिकल सेवा वालों को खास सकाश देता है। और हमने भी गौर किया, देखा कि पहले इतने ज्यादा रिफाइंड जो मींस थे वो नहीं थे मेडिकल क्षेत्र में, उसके बाद बहुत बहुत रिफाइंड मींस निकलने लगे। मुझे याद आता है कि जब हमारे लौकिक माताजी पिताजी वगैरह का आंख का ऑपरेशन होता था, सिंपली मोतिया बिंदु का, तो वो बस मोतिया निकाला जाता था, और एक महीने तक लगभग उन्हें कहा जाता था कि आपको करवट भी नहीं लेनी है, और बहुत स्थिर रीति से चारपाई पर पलंग पर पड़े रहना है। और अभी तो ऐसा हो गया है कि बस सुबह गए, एडमिट हुए, थोड़ी देर के बाद ऑपरेशन किया, और शाम को रिलीव भी कर देते हैं। तो ये बात है कि चूंकि हम बच्चों के हिसाब किताब बहुत हैं, और बाबा तो रहम दिल है, दया का सागर है, बाबा को देखा नहीं जाता, तो बाबा ने खास इस विंग के लिए एक तो ये बच्चों को कहा है कि ये बच्चों के जो हिसाब किताब है उनको हल्का करने का काफी बड़ा काम करेगा, कर रहा है, उसके बाद से हम नियमित देख रहे हैं। दूसरा बाबा ने कहा था कि एक वैज्ञानिक साइंटिस्ट इंजीनियर विंग, इसका इन बच्चों को भी बाबा विशेष सकाश देता है, क्योंकि पूरी दुनिया को संदेश देना बाकी है। अभी तक तो बहुत कम आत्माओं तक बच्चे पहुंचे हैं जिनको संदेश मिला है, लेकिन ऐसा समय भी आएगा जब बस एक बटन दबाएंगे और हजारों लाखों तक संदेश पहुंच जाएगा। और हमें याद है तब तक ईमेल और ये इंटरनेट ये सब कुछ नहीं होते थे, ये साधन कोई अवेलेबल नहीं थे, लेकिन तब से उसमें जब से ये साधन आए हैं तब से इस सेवा में और बहुत तेजी हुई है, और हम सब जानते हैं कैसे ये सेवा बढ़ती जा रही है, और एक एक ईमेल के द्वारा, इंटरनेट के द्वारा संदेश चारों तरफ पहुंचते जा रहे हैं। ये एक संसाधन है। और तीसरा बाबा ने कहा था कि ये ट्रांसपोर्ट, क्योंकि बच्चों के द्वारा विश्व को साक्षात्कार होने हैं, बाप का साक्षात्कार होगा तो बच्चों को साक्षात मूरत भी बनना है और साक्षात्कार मूरत भी बनना है। तो साक्षात बनने के लिए तो ब्रह्मा बाबा हमारे सामने रोल मॉडल है कि ब्रह्मा बाबा किस प्रकार से साक्षात सबको, जो भी बाबा के सम्मुख आता था उसे ऐसा आभास होता था कि जैसे किसी फरिश्ते के सम्मुख आ गए हैं, और बस बाबा के नैनों में देखते ही बहुत आत्माएं तो ध्यान में चली जाती थीं और बहुत आत्माएं ऐसा विदेहीपन का अनुभव करती थीं। तो इस रीति से बाबा ने ये संसाधन तो दिए ही हैं हमें, जिनके की द्वारा सेवा हो रही है और काफी तेजी से हो रही है, सबको मालूम भी है। और इन्हीं संसाधन के द्वारा भी अभी भी जो सेवा, जब से ये कोरोना का पीरियड तेज हुआ है तो ये सेवा और भी बढ़ती जा रही है, जो ऑनलाइन पूरा का पूरा संदेश सब बच्चों को मिलता जा रहा है, आईटी के द्वारा, वैज्ञानिक इंजीनियर्स के द्वारा आदि आदि, ये सारी सेवाओं का इतना विस्तार हुआ है इसमें तो सबको मालूम ही है, और इसमें कोई और विशेष बात नहीं है। हम सबको कैसे उसको यूटिलाइज करना है, क्योंकि ये विज्ञान को और बाकी है करना कि जैसे कोई भी टेक्नोलॉजी बनाए वो टेक्नोलॉजी एक तरीके से एक्सीडेंट प्रूफ हो। प्लेन भी बन रहे हैं, बहुत तेज तेज रॉकेट भी और सब कुछ है, लेकिन एक्सीडेंट प्रूफ हो, वो केवल सुख के ही साधन रह जाए, वो दुख के साधन न बन जाए। तो ये बात विशेष है, और इसीलिए ही तो विशेष करके दूसरे जो प्रकार के, ये है सब स्थूल संसाधनों की बात, और दूसरे प्रकार के जो संसाधन है वो है सूक्ष्म संसाधन। और जिनके लिए एक विश्व के बहुत प्रसिद्ध डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग होके गए, जैसे हमारे देश में या विश्व में गांधी जी का नाम है, ऐसे डॉक्टर मार्टिन लूथर किंग का भी बहुत नाम है। उन्होंने भी बहुत सोशल क्षेत्र में बहुत बहुत कार्य किया है, और उसमें उन्होंने एक बात कही थी कि साइंस को सामने रखते हो कि साइंस हैज कम्प्लीटली फिनिश्ड अवर स्पिरिचुअल पावर, वी हैव गाइडेड द मिसाइल्स बट मिसगाइडेड द मैन। विज्ञान ने हमारी जो है आध्यात्मिक शक्ति को काफी नष्ट कर दिया है, नष्ट कर दिया है माने विशेष करके वैज्ञानिक साधनों की चकाचौंध में हम जैसे आध्यात्मिकता को बहुत हद तक भूल गए हैं। हमने मिसाइल तो गाइड कर दिए हैं, ऐसे ऐसे रॉकेट मिसाइल बनाए हैं जो हजारों मील दूर जाके बिल्कुल पिन पॉइंट पर अटैक कर सकते हैं, लेकिन आदमी को मिसगाइडेड कर दिया है, व्यक्ति को। क्यों? क्योंकि विज्ञान की चकाचौंध में बस वो विज्ञान को ही सब कुछ समझने लगा है, और आध्यात्मिकता की तरफ से जैसे वो दूर होता जा रहा है, स्पिरिचुअलिटी की तरफ से दूर होता जा रहा है। तो ये सूक्ष्म संसाधनों की तरफ हमें अभी विशेष ध्यान देना है, क्योंकि बाबा ने ये भी बताया है विज्ञान भले बहुत उन्नति कर रहा है, और ये सब उन्नति हमारे सतयुग के लिए हो रही है, वहां पर सब जैसे एक्सीडेंट फ्री होगा, सब सुख के ही साधन रहेंगे, और विज्ञान केवल सुख के लिए होगा, दुखदायी नहीं होगा जैसे यहाँ है। लेकिन बाबा ने ये भी कहा है कि यहाँ पर ऐसा भी समय आएगा जब विज्ञान के सब साधन भी फेल हो जाएंगे। जो भी विज्ञान के संसाधन हैं, जितने भी साधन बनाए हैं, मोबाइल है, इंटरनेट है, जो भी कंप्यूटर, जितने भी साधन हैं, वो फेल हो जाएंगे। हम लोगों को भी जब हम लोग इंजीनियरिंग में थे, एम टेक में पढ़ाया गया था कि इतिहास इस बात का साक्षी है थोड़ा कि अर्थ में जो मैग्नेटिक फील्ड होती है, नॉर्थ पोल साउथ पोल, तो ऐसा समय भी आता है जब रिवर्सल ऑफ पोलैरिटी होती है, यानी साउथ पोल नॉर्थ पोल बन जाता है और नॉर्थ साउथ बन जाता है। उससे क्या होता है कि विश्व का पूरा कम्युनिकेशन सिस्टम फेल हो जाता है, ना मोबाइल काम करेगा, ना कोई कंप्यूटर काम, कुछ भी काम नहीं करेगा। इसीलिए आज विशेष आवश्यकता है कि जो संसाधन है हमारे, सूक्ष्म संसाधन जो है, सटल जो है, उनको हम विशेष तवज्जो दें और उनको बढ़ाएं। और इसीलिए बाबा बार बार कहता है मन के द्वारा सेवा, क्योंकि सूक्ष्म जो साधन है वो, उसमें मन एक मुख्य है। हम सब ने भी पढ़ा है कि ब्रह्मा बाबा भी सूक्ष्म साधन मन का कितना सदुपयोग करते थे, और उसमें जब कोई खास बच्चे की तबीयत खराब होती थी, वैसे तो रेगुलर वे में ही बाबा इसका अपनी वाइब्रेशंस के द्वारा सकाश दिया करते थे। मुझे याद है ब्रह्मा बाबा के साथ तो मैं कई साल रहा हूँ, 6-7 साल, और बाबा ये जब हिस्ट्री हॉल में क्लास कराने आते थे तो बस 15-20 लोग 25 लोग बैठे होते थे, तो बाबा अक्सर कहा करते थे कि बाबा केवल इन बच्चों को नहीं देख रहा है, बाबा के सामने विश्व की समस्त आत्माएं हैं, और उन सब विश्व की आत्माओं को देख करके बाबा मुरली चला रहा है, बाबा ये ज्ञान सुना रहा है। तो इसीलिए इसका भाव यह है कि हम सबको भी ना विश्व की समस्त आत्माओं को सकाश देना है। और बाबा कई बार कहते हैं, और जो ये अव्यक्त बाप दादा के टाइम टू टाइम बीच में ये महावाक्य सुनाए जाते हैं, इनमें भी अक्सर करके ये आता है, बाबा ये कहता है कि आप बच्चों को भी अब उड़ते फरिश्ते बन करके आत्माओं को, दुखी अशांत भयभीत आत्माएं जो हैं, उनको आपको वो देना है जिसकी उन्हें आवश्यकता है। जिसको शांति की आवश्यकता है उस तक शांति की किरणें पहुंचे, जिस पर प्रेम, जिसको प्रेम की आवश्यकता है, सुख की आवश्यकता है, शक्ति की आवश्यकता है, आपसे ऐसे वाइब्रेशन निकले। और वो कब होगा, वो भी बाबा ने बताया है कि जैसी हमारी वृत्ति होती है, मंशा संकल्प से भी सूक्ष्म वृत्ति होती है, वृत्ति के द्वारा जैसे वाइब्रेशन होते हैं, वाइब्रेशन एक विज्ञान में पढ़ाया गया था, एक ट्यूनिंग फॉर्क होता है, वाई शेप का जैसे होता है, उसको पकड़ते हैं तो एक ट्यूनिंग फॉर्क को अगर थोड़ा बजाओ किसी से तो बस वो वाइब्रेट करता है और साउंड निकलती है। उसको अगर दूसरे ट्यूनिंग फॉर्क तक ले जाते हैं पास में ही, टच भी नहीं कराते पास में, तो दूसरा भी वाइब्रेट करने लगता है, उससे भी वो वाइब्रेशन की आवाज निकलने लगती है। तो वृत्ति से वाइब्रेशन, ऐसे ही हमारा मन है, संकल्प है, शक्ति है, तो जैसी हमारी वृत्ति होगी, जैसे हमारा मन के संकल्पों की वाइब्रेशन होगी, वो वाइब्रेशन विश्व की अनेकों आत्माओं तक वो पहुंचेगी। और उससे क्या होगा, जब विश्व में चारों तरफ वो आत्माओं तक पहुंचेगी तो उस, बाबा ने कहा, उससे वायुमंडल बनेगा। वृत्ति से वाइब्रेशन, वाइब्रेशन से वायुमंडल बनता है। और बाबा ने कहा है, सुनी हुई बात तो व्यक्ति भूल भी सकता है, लेकिन सुनने की बात नहीं, इसमें ऐसी बात है कि देखी हुई बात, अनुभव की हुई बात व्यक्ति कभी नहीं भूलता। इसीलिए अब उनको ये अनुभव कराने की जरूरत है, तो ये वृत्ति से वाइब्रेशन और वाइब्रेशन से वायुमंडल बनाने की जरूरत है। और उसके लिए पहले सबसे बड़ी शक्ति जो बाबा ने बताई, जो बच्चों को आवश्यक है, वो है एकाग्रता की शक्ति। बाबा भी अनुभवी रथ भगवान ने लिया है, ब्रह्मा बाबा। तो बाबा कहा करते थे कि बस मैं भी जब बैठता हूँ ना, मेरा मन भाग जाता है। कभी बिजनेस में भागता है, कभी परिवार में भागता है, कभी साथियों की तरफ भागता है, बहुत सारे जहाँ जहाँ मन का कहीं भी थोड़ा सा जुड़ाव है, वहाँ बार बार मन भाग जाता है। तो फिर बाबा ने क्या कहा, क्या किया बाबा ने? बाबा ने मन को पत्र लिखा, और मन को पत्र लिख के बाबा ने मन को सावधान किया कि ये मन, तू मेरा मंत्री है, मैं आत्मा राजा हूँ, तुझे मेरे कहने पर चलना पड़ेगा। और तब बाबा को भी रियलाइज हुआ, मन तब तक नहीं चलता जब तक हम अपने सोमान की सीट पर नहीं बैठते। जब सोमान की सीट पर होगा, कोई व्यक्ति पावर की सीट पर होता है तो उसकी बात सभी मानते हैं, लेकिन अगर वो अपनी पावर छोड़ देता है, पावर की सीट पर नहीं होता, इलेक्शन मिनिस्टर है, कोई हार जाता है, या कोई बड़ा लीडर है, बड़ा ऑफिसर है, उसका ट्रांसफर हो जाता है, उस सीट पर कोई दूसरा है, तो कोई भी उसकी बात नहीं मानेगा। तो हमें भी वो सोमान की सीट पर बैठने की जरूरत है, और जब सोमान पर बैठ करके हम मन को ऑर्डर करते हैं, तो मन बंधा हुआ है हमारा ऑर्डर मानने के लिए। और वही बाबा ने कहा और किया कि रोज रात को बैठ के बाबा दरबार लगाते थे, मन बुद्धि संस्कार इन सब कर्म इंद्रियों के, और देखते थे, मन से पूछते थे, आज ये मन, तू कितनी बार अपनी मन मर्जी से इधर उधर गया, कितनी बार तूने मुझ आत्मा राजा का ऑर्डर माना। तो इनकी दरबार रोज हम लगाएं, जिसे बाबा चार्ट भी कहते हैं, और इनकी दरबार लगाने से फिर धीरे 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 ये हमारे वश में जब हो जाते हैं, तब हम जो भी शक्ति को ऑर्डर करेंगे वो शक्ति तुरंत ही आएगी। बाबा कई बार कहते हैं, बच्चे कहते हैं, बाबा हमने फलानी शक्ति को बुलाया लेकिन वो शक्ति तो आई नहीं, ऑर्डर नहीं माना। तो बाबा कहते हैं, चूंकि तुम सोमान की सीट पर बैठ करके ऑर्डर नहीं किया, इसलिए उसने नहीं माना। पहले अपने को सोमान की सीट पर स्थित करो, और उसके लिए आवश्यकता है सबसे बड़ी एकाग्रता की। और ये एकाग्रता बहुत बहुत अंत में आवश्यक है। उसके कई फेस तो हमने देख लिए हैं। वैसे भी आप देखो, जब कोई बात सुन रहे हैं, इवन बाबा की भी मुरली सुनते हैं, तो जब बाबा की मुरली सुन रहे हैं, सुनते सुनते अगर मन कहीं भाग गया तो बाबा ने जो भी बात कही है वो बात तो दिमाग से मैं बैठती नहीं, क्योंकि मन भाग गया। फिर मन को पकड़ के लाते हैं, और जब मन ध्यान से बाबा की मुरली को सुनता है तो उस बात को पकड़ता है और वो धारणा में आती है। तो इसलिए अभी जरूरी ये है कि मन की एकाग्रता को बढ़ाना। और उसके लिए बाबा ने दो बात कही है कि बुद्धि कैसी होनी चाहिए, क्लीन और क्लियर बुद्धि होनी चाहिए। क्लीन बुद्धि जितनी होगी, क्लीन माने साफ, मानो आईना भी है, अगर साफ नहीं है तो हमें अपना प्रतिबिंब ठीक दिखाई नहीं देगा। बड़ा अच्छा किसी ने कहा भी है इसके लिए कि जिंदगी भर एक ही भूल करते रहे, जिंदगी भर एक ही भूल करते रहे, धूल चेहरे पर थी आईना साफ करते रहे। धूल चेहरे पर है, लेकिन आईने में भी चेहरा तो साफ दिखाई नहीं देगा, चाहे धूल इधर है, आईना बिल्कुल साफ है, लेकिन आईना पर दोष लगाते रहे कि प्रॉब्लम वहां है। तो ये संस्कार बन गया हमारा कि दूसरे को ही हम ब्लेम करने लगे, और इसलिए हमारी एकाग्रता की शक्ति भी धीरे धीरे खत्म होती चली गई। तो अभी आवश्यकता है एकाग्रता की। जिन्होंने भी सफलता पाई है जीवन में किसी भी क्षेत्र में, उसका एक मुख्य कारण एकाग्रता है। वैज्ञानिकों ने चाहे कोई रिसर्च करी, उन्होंने चाहे बड़े बड़े संत महात्मा होके गए हैं, उन्होंने तपस्या की, आध्यात्मिकता का क्षेत्र कोई हो, तो वो क्षेत्र के कारण उन लोगों ने सफलता पाई। तो इसलिए एक तो क्लीन भी चाहिए और क्लियर भी चाहिए। आईना भी साफ है, सब कुछ ठीक है, लेकिन हमारी आंख में पावर है और ठीक पावर का चश्मा नहीं है, या कोई आंख से ही धुंधला दिख रहा है तो वो भी धुंधला दिखेगा। तो आवश्यकता यह है, ये समय पर हम अपनी बुद्धि को क्लीन और क्लियर रखें। तो उससे क्या होगा कि जब भी आवश्यकता होगी, देखो बाबा का भी पार्ट सारे चेंज हुए हैं और बचे हुए पार्ट चेंज होने का अब समय आ गया है और वो हो रहा है। पहले तो साकार ब्रह्मा बाबा के द्वारा बाबा ने कितनी पालना दी, कितने बच्चों को तैयार किया, उसके बाद साकार ब्रह्मा बाबा भी जब संपूर्ण बन के सूक्ष्म वतन में चले गए, तो फिर बाबा ने दूसरे रथ का आधार लिया, गुलजार दादी के रथ का, उनके द्वारा वो बताते गए। तो उसमें भी हमें अपनी बुद्धि लगाने की विशेष जरूरत नहीं थी, लेकिन अब बाबा धीरे धीरे कुछ समय से जैसे ना वो भी पार्ट बाबा ने एक तरफ किनारे कर दिया। अभी तो बस पुराना वीडियो जैसे दिखाया जाता है, और इसमें कितना बड़ा कल्याण है। क्यों? क्योंकि अब समय ऐसा आ रहा है कि बाबा को अगर कोई चीज टच करानी होगी तो इंडिविजुअल को ही बाबा उसकी आवश्यकता अनुसार टच कराएगा। इसीलिए क्लीन क्लियर बुद्धि के साथ एक कैचिंग पावर और दूसरी टचिंग पावर, ये दोनों पावर भी स्पष्ट होनी चाहिए। क्योंकि बाबा जो भी टच कराएगा, आपदा आएगी, जो कोई भी आपदा आने वाली होगी, बाबा बंधा हुआ है। बाबा ने कहा मैं बंधा हुआ हूँ बच्चों की रक्षा के लिए। तो वो संसाधन को अगर हमने, हमारे पास इतना पावरफुल ये संसाधन है, डायरेक्ट भगवान जो त्रिकालदर्शी है वो टच करा रहा है, लेकिन अगर हमारी कैचिंग पावर इतनी स्पष्ट नहीं हुई, हम उसे टच नहीं कर सकेंगे, कैच नहीं कर सकेंगे, तो क्या होगा, हमारे कदम सही रास्ते पर नहीं चलेंगे। और बाबा ने कहा है, बाबा बंधा हुआ ये कराएगा और बच्चे भी उसे रिसीव करके, उन्हें सोचना नहीं पड़ेगा ये करूं या ना करूं, ऑटोमेटिकली उनके पैर उधर बढ़ेंगे जहां सेफ्टी होगी। बाबा बंधा हुआ इस काम के लिए, लेकिन बाबा तो टचिंग करने के लिए बंधा ही हुआ है, लेकिन अगर हम कैच ही नहीं कर पा रहे, हमारा एंटेना अगर ठीक नहीं है, तो इसमें बाबा का तो कोई दोष नहीं है। बाबा तो हम बच्चों को रोज इतनी दूर से आके पढ़ाता है, और इसीलिए कैचिंग पावर और टचिंग पावर ये दोनों भी बहुत आवश्यक है। और इसीलिए बाबा ने कहा है विचार सागर मंथन की, कि ज्ञान भी जो है, बुद्धि का विकास कहाँ होता है, जहाँ एकांत होता है। बुद्धि का विकास हमेशा एकांत में होता है, और चरित्र का विकास हमेशा संगठन में होता है। तो बाबा ने ये संगठन भी दिया है चरित्र के विकास के लिए, और बुद्धि के विकास के लिए बाबा ने एकांत भी दिया है। इसीलिए भट्टी के कार्यक्रम चल रहे हैं, और ये एकांत की बाहर संगठन से जितना थोड़ा दूर भी रहेंगे, एकांत का समय मिलेगा, भट्टियां हो रही हैं, योग, तो उसमें बुद्धि का विकास होगा, और जितना जितना बुद्धि का विकास होगा एकाग्रता बढ़ती जाएगी, और ये एकाग्रता बढ़ने के साथ साथ समय पर हम वो कैच कर सकेंगे जो बाबा हमें टच कराना चाहता है और अंत समय ये ही सारे पार्ट चलने हैं। और ये पार्ट अगर हम अभी से प्रैक्टिस नहीं करेंगे, इसीलिए बाबा ने कहा है अचानक एवर रेडी और बहुत काल। कोई भी अभ्यास जितना बहुत काल का होगा उतना उसमें मास्टरी हो जाती है, और बहुत काल का अभ्यास मास्टरी करा देता है तो वो काम हमें बड़ा सहज लगने लगता है। शुरू में साइकिल चलाना सीखते हैं मुश्किल होता है, गिरते हैं, बाद में सहज, सोचने की भी जरूरत नहीं पड़ती, अपने आप ही चलती जाती है। माताओं को भी भोजन बनाने का अभ्यास है, शुरू में गोल गोल रोटी नहीं बनती है, लेकिन बाद में जब अभ्यास हो गया उधर बात भी करते रहो कुछ काम भी, वो अपने आप ही गोल गोल बनती रहेगी। तो अभ्यास हमें जो परफेक्शन बना रहा है, तो आज आवश्यकता ये है कि बाबा ने जो हमें बोला है उसको हम पक्का करते रहें, और जितना जितना हम इसे पक्का करते रहेंगे उतना समय पर, समय हमारा मास्टर न बने, हम समय से पहले हो जाएं। समय बाबा ने कहा आपकी रचना है, हम पहले से ही अपने को ऐसा तैयार कर ले समय से पहले, जिससे कि सब आत्माओं को हमारे द्वारा साक्षात्कार हो, हम साक्षात मूरत बने, और जितना जितना ये साक्षात्कार कराते चलेंगे दूसरों को उतना उतना हम सफलता मूरत बन के आगे बढ़ते रहेंगे। तो इसलिए अंत में बाबा का मैं यही बात बताना चाहूंगा कि बाबा ने जो किया उसके लिए बाबा ने सारा समेट लिया, और जितना समेटते गए बाबा उतना उतना एकाग्रता बहुत बढ़ती गई। तो अभी हम भी जितना फैलाव किया है उसको हम समेटते जाएं, तो हम बाबा के पदचिन्हों पर चलते हुए उस सफलता को पाएंगे जो बाबा ने भी संपूर्ण बन के पाई। ओम शांति, ओम शांति।
तुम निगाहों में ओ बाबा, और कुछ देखने की जरूरत नहीं, जरूरत नहीं। तुम्हें दिल जिगर में बसे हो सदा, और दिल की कोई हसरत नहीं, हसरत नहीं। तुम्हें तुम निगाहों में ओ बाबा, शब्दों में हम कह पाए नहीं इतना प्यार करते हो, पढ़ते नहीं धरती पर कदम इतनी शक्ति भरते हो। तुम्हें मन के मन